ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा में भाग लेते हुए कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बजट ने लोगों को निराश किया है। उन्होंने संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थानांतरित करने पर सवाल उठाया। श्री चन्नी ने कहा कि इस बजट में पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। बजट पर पक्षपात के आरोपों का खंडन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुनील तटकरे ने कहा कि उनके राज्य महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विकास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासन के दौरान हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार के अच्छे कार्यों की विपक्षी सदस्यों द्वारा भी प्रशंसा करना सदन की परंपरा रही है, लेकिन इस बार विपक्ष सिर्फ आलोचना के लिए बजट की आलोचना कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि यह हाल के दिनों का सबसे विभाजनकारी बजट है। उन्होंने कहा कि बजट की कई विशेषताएं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से ली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के बैजयंत पांडा ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि बजट का दायरा व्यापक है और देश को आगे ले जाने के लिए आवश्यक सुधारों वाला है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। बाद में लोकसभा को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में आज केंद्रीय बजट 2024-2025 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 2024-2025 के बजट पर चर्चा फिर से शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसान, गरीब और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बीजू जनता दल के देवाशीष सामंत्रे ने आरोप लगाया कि बजट में देश की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बजट में ओडिशा को कुछ नहीं दिया है। भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने महाराष्ट्र के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं। डीएमके के एन शानमुगम, अन्नाद्रमुक के सी वी शानमुगम, कांग्रेस की रजनी पाटिल और अन्य ने भी चर्चा में भाग लिया। बाद में राज्यसभा में सदस्यों ने विशेष उल्लेख के दौरान सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। बहस कल भी जारी रहेगी। भारत ने कनाडा में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कनाडा ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को मारने की धमकी देने के लिए दो लोगों पर आरोप लगाया है, लेकिन भारतीय नेताओं और राजनयिकों की धमकी देने वालों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जब कोई लोकतांत्रिक देश कानून के शासन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लागू करने के लिए अलग अलग पैमाने अपनाता है तो यह उसके दोहरे मानदंड को उजागर करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि एशिया और बहुध्रुवीय विश्व की संभावनाओं के लिए भारत और चीन के संबंधों में स्थिरता आवश्यक है। डॉ जयशंकर ने आज लाओस के वियतियाने में सीपीसी पोलित ब्यूरो सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान यह बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन देने की आवश्यकता पर सहमत है। सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के बीच अब तक 6,700 से ज्यादा भारतीय छात्र स्वदेश लौट चुके हैं। आज नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को बांग्लादेश सरकार से पूरा सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कल कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कल हर भारतीय के लिए बहुत खास दिन है। उन्होंने कहा कि यह देश की रक्षा करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे और देश के वीर नायकों को श्रद्धांजलि देंगे। श्री मोदी ने यह भी बताया कि कल शिंकुल्ला सुरंग परियोजना के लिए भी काम शुरू होगा। यह परियोजना खासकर खराब मौसम के दौरान लेह से बेहतर संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर लिए। अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने के अवसर पर राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति संपदा में डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक की भूमिका निभाई। स्कूल में कक्षा 9वीं के छात्रों के साथ बातचीत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रकृति संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का पाठ पढ़ाया। पेरिस ओलंपिक 2024 की औपचारिक शुरुआत कल से हो रही है। दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक के इतिहास में यह पहला मौका है जब उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में न होकर सीन नदी के किनारे आयोजित किया गया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।